شنیدی.
اوه شنیدی.
بابا نے کہا یہ سوکشم اسٹڈی ہے، اس میں آواز کی ضرورت نہیں.
آواز کی دنیا سے بھائی
سوکشم اسٹڈی ہے، اس میں
آواز کی
آواز کی ضرورت نہیں. بھارت کا آواز سائنس نے کیا کر دیا
جی؟
سائنس نے بھارت کا آواز
ودیش
تک پہنچا دیا. تو اپنے دل کی شبھ کامنا کا آتما، اپنی دل کی شبھ کامناؤں کو آتماؤں تک نہیں پہنچا سکتے. پرشن پوچھے نا آج سائلنس کی شکتی کو کیا کرو؟ پرتیکش کرو. ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا براہمن مجھ میں سائلنس کی شکتی نہیں ہے. ہر آتما میں سائلنس کی شکتی ہے.
سیوا بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ ٹائم نہیں.
لیٹے لیٹے
ماں بابا کے سامنے کوئی اٹیک ہو جاتا تھا نہیں کر سکتے. اب سیوا کا پاس چینج کر
دیت
آدھی رات ہوں تو لگے تو یہ بھی کر سکتا ہے.
تو آواز میں آنا سمجھے یا آواز سے پرے جانا سمجھے؟ بابا نے پوچھا تھا ایک مرلی میں. ایک ویکت مانے میں بابا پوچھ رہے ہیں بچوں سے، سب بڑے مہارتی بیٹھے ہیں. دوسرے پرشن پوچھتے ہیں تو ان کا پرشن کے اتر دینے میں کون کون ہوشیار ہے؟ اجانی اجانی سب نے ہاتھ کھڑا کیا. प्रश्न जब पूछा जाता है तो प्रश्न के उत्तर देने में कितने होशियार है? सबने हाथ खड़ा किया. फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा, प्रश्नों से परे जाने में कितने होशियार है? हाथ नीचे. चित्त और प्रसन्न चित्त, आज बोला ना, पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की निशानी क्या है?
सदा प्रसन्न,
सदा प्रसन्न.
नयन चेहरे चलन,
नयन चेहरा चलन संकल्प संबंध
संपर्क
संबंध सब में क्या दिखे? प्रसन्नता.
प्रसन्नता
तो आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस करनी है. आवाज में आना सहज है, आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस चाहिए. जिसका जिससे प्यार होता है उसको
याद,
उसको उसके साथ रहते हैं. संसार में भगवान ने कहा है कि जिसका जिससे प्यार होता है
उसके साथ
वो उसके साथ रहते हो. तुम कहते हो तुम्हारा प्यार मुझसे है,
मेरे साथ
मैं रहता हूँ ऊपर, तुम नीचे क्यों रहते हो? मैं हूँ अव्यक्त, तुम व्यक्त क्यों? मैं हूँ आवाज के परे, तुम आवाज में क्यों? कभी बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा था.
बहुत अच्छा महावाद,
बहुत सुंदर महावाक्य. तो क्या कहा आज बाबा ने? आज की मुरली रिवाइज करते हैं.
रूहानी पर्सनैलिटी बेहद
कौन किससे मिलने आया है?
पहली लाइन ही बहुत
बाप दादा अनेक कल्प से कल्प कल्प के जो मिले हुए सिखिले बच्चे हैं उनसे फिर से
मिलने आए.
फिर से एक साकार मुरली है जो पूरी फिर से पर चली है. पूरी फिर से क्या क्या हुआ है? क्या क्या हुआ है चिमन भाई? फिर से
अनेक बार ब्राह्मण बने,
फिर से ब्राह्मण बने, फिर से बाप आए,
बाप के बने,
फिर से बाबा के बने. बाप को जानना, बाप को पहचानना, बाप का डायरेक्ट बच्चा बनना, क्या ये?
फिर से
भाग भाग्य विधाता को जानना, हाँ। भाग्य विधाता को पहचानना, उसका बनना और उसके डायरेक्ट बच्चा, यह है सबसे बड़ा भाग्य. तो फिर से बाप के बने, फिर से बाप को पहचाना, फिर से बाप के बने, बाप के डायरेक्ट बच्चे बने, फिर से भाग्य का भाग्य प्राप्त किया. और क्या क्या किया? फिर से मधुबन निवासी बने.
फिर से यहाँ आगे
बाबा ने एक मुरली में बोला है, मधुबन एक समय ऐसा आएगा कि मधुबन शीश महल बन जाएगा. और एक बहुत सुंदर वाक्य है, कोई विकारी आत्मा कहे कि मैं अपना शीश काट कर रख दूं फिर भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगी. अब महावाक्य, साकार महावाक्य बाबा का, साकार महावाक्य. अगर कोई कहे कि मैं अपना शीश भी काट के रख दूं तो अंदर आ नहीं सकेगा। अव्यक्त है या साकार में पता नहीं है, अव्यक्त है।
70 या
69 और 70 की मुरली शायद मुझे याद नहीं आ रही। तो जब मधुबन व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा तो शीश महल बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, नगरी बन जाएगी, लाइट हाउस, माइट हाउस, पावर हाउस,
चुंबक,
चुंबक, रूहानी चुंबक बन जाएगा।
जब व्यर्थ से मुक्त होंगे, कंडीशन है
निर्विघ्न, मधुबन निर्विघ्न, मधुबन निवासी निर्विघ्न, सेंटर निर्विघ्न, धोन निर्विघ्न, घर निर्विघ्न।
उस डेट का इंतजार है बाप दादा को?
बाप दादा को डेट तो पता है।
तो बाबा ने कहा उस दिन का इंतजार है, कम मधुबन
पता है, लेकिन इंतजार तो है।
दीपक
और फिर से क्या है, फिर से मधुबन निवासी, फिर से
कलयुग,
फिर से संगठन, फिर से हमारा राज्य आएगा, फिर से शिव जयंती आएगी। सुबह से शुरुआत से चालू करो, पांचों स्वरूप, फिर से परम धाम, फिर से सतयुग, पांचों स्वरूप हमारे श्रेष्ठ है। एक वरदान था ना, जब हम परम धाम में है तब भी श्रेष्ठ, जब हम सतयुग में है तब भी श्रेष्ठ, द्वापर में हमारी पूजा, संगम युग में भी प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, 17 तारीख का वरदान है, हमारे पांचों ही स्वरूप श्रेष्ठ है। फिर से हमारी पूजा होगी, फिर हम ही फरिश्ता बनेंगे, पहले हम ब्राह्मण बनेंगे, फिर से पर मुरली चली है एक साकार पूरी। तो आज की वाणी में बाबा ने कहा कि बाप दादा फिर से, देश विदेश के बच्चे फिर से आ गए यहाँ मिलन मनाने, और ये मिलन कैसा है,
रूहानी
और अलौकिक मिलन है, ये रूहानी और अलौकिक मिलन है, ये साकार स्वरूप का मिलन है, ये बाप दादा और बच्चों का, किस किस का मिलन है ये। और
भी एक
शुरुआत,
ये मिलन किस किस का है, बाप और बच्चों का, और
अव्यक्त
व्यक्त और अव्यक्त। मधुबन के लिए बाबा ने एक और एक महावाक्य कहा है, मधुबन है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम,
पुरानी दुनिया और
नई दुनिया का संगम, ये भी मधुबन के लिए महावाक्य। और ये मिलन कौन किस किस का है, दीपक भाई किसका मिलन है, बाप और बच्चों का, सागर और ज्ञान, सागर और ज्ञान, नदियों का,
गंगाओं का,
चैतन्य धारा, अभी मुरली थी ना, ज्ञान सागर की तुम चैतन्य धारा हो, तुम में नहाकर संसार वाले पावन बनेंगे, मनुष्य पावन बनेंगे, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में नहाकर मनुष्य पावन बनेंगे। और किसका मिलन है, ये बाप बच्चों का, नदी और सागर का, आत्मा परमात्मा का,
युगों का भी मिलन,
सीता और राम का, और किसका मिलन है,
शिव पार्वती,
शिव और पार्वती का,
व्यक्त और अव्यक्त का,
व्यक्त और अव्यक्त का, और आशिक और माशूक
का,
और
शालिग्राम और
शिव का। तो यह मिलन कैसा है, अलौकिक है, इस युग को वरदान है आत्मा और परमात्मा के मिलन का। और व्यक्तवाणी चली ना अभी लास्ट, इस युग को वरदान है आत्मा और परमात्मा का, हेलो बाप दादा को करने का वरदान है, विजय की मौसम है, संगम युग को वरदान है, संगम युग की विशेषता है, उड़ती कला सर्व का भला, ये वरदान है इस युग को। आगे
आगे
नेक्स्ट पैराग्राफ, संजय भाई
घर में आए मिलन मनाने, देश विदेश के,
घर में आए, देश विदेश के आए, घर में आए, व्यक्त से, अभी तक तो अव्यक्त से मिलन मनाते थे, अभी व्यक्त से, अव्यक्त से व्यक्त में मिलन मना रहे हैं,
अव्यक्त में माना घर,
फिर से घर में पहुंच गए, दो बार फिर से शब्द है वहां पर, सिक्की लदे बच्चों फिर से मिलने आए और वापस से फिर से घर में पहुंच गए, फिर से शब्द का बहुत गहरा अर्थ है, ड्रामा में फिर से टॉप सीक्रेट है ड्रामा फाइन बना हुआ है इसमें विचार था मंथन की जरूरत है एक्यूरेट है
ये परसेंट हमारे ड्रामा एक्यूरेट है ये बेफिक्र रहने की
उपाय आपको याद करने का चिंतन करना और ज्ञान का जो है
अगर मंथन करना है नई नई पॉइंट निकलेगी विचार सागर मंथन करोगे तो लिखो पढ़ो
चिंतन चिता की तरह हो कि कितना याद किया
मिस सोचो कि क्या क्या मिस हुआ विचार सागर मंथन का बहुत आवश्यकता है क्यों बाबा ने बोला ना उस दिन जज करो शास्त्रों में जो लिखा है वो राइट है या मैं जो कह रहा हूँ वो राइट है जबकि वो पता है कि वही राइट है फिर भी वो कह रहा है कि चिंतन करो सुबह सुबह उठकर चिंतन करो सारे दिन भर में चिंतन करो विचार सागर मंथन करो इसकी बहुत आवश्यकता है उसके कुछ कारण है क्यों
बाबा ने कहा मैं जो सुना था इसे सुन लो ऐसा उस पर तुम चिंतन
हाँ इसका इसमें अविश्वास की बात नहीं है इसमें हमारा एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो ज्ञान है वो हमारे बुद्धि में स्पष्ट होता है एक है वैसे ही स्वीकार कर लेना वो नहीं उसको रिजेक्ट करके उस पर चिंतन करके उसको स्वीकार करना और फिर एक्सेप्टेंस वो जो होगा वो लंबे समय के लिए होगा वो हमारा हमने उस पॉइंट को अपना बना दिया ज्ञान शक्तिशाली नहीं बनाता है ज्ञान का चिंतन शक्तिशाली बनाता है गए मुरली सुनी और बहुत अच्छा लगा और आ गए इससे शक्ति नहीं भरेगी खाना खाना इससे शक्ति नहीं भरेगी एक साकार मूर्ति अव्यक्तवाणी हजम कितना किया कि नहीं किया उससे शक्ति बनेगी खाना तो खा रहे हो ज्ञान तो सुन रहे हो ज्ञान सुनना एक बात है ज्ञान को मानना समझना अंदर धारण करना वो है नहीं तो शक्ति नहीं बनेगी ज्ञान सुन रहे कितने सालों से मुरलियां सुन रहे शक्ति बन रही है क्या क्यों नहीं बनती क्योंकि मनन नहीं कर रहे बाप का कहा हुआ एक एक वाक्य महावाक्य है बहुत ज्यादा चिंतन की जरूरत है बहुत ज्यादा चिंतन की जरूरत है जितना लाइटली हम ले रहे उतना लाइटली उसको लेंगे तो हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे
अव्यक्त मुरली में कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जैसे कि मतलब याद रखने जैसे
इसके लिए बाबा ने क्या किया रत्न है एक एक वर्षन जो है लाखों का है एक एक वर्षन लाखों का है अगर किसी को रत्नों का भरा कुछ मिल गया उसमें रत्न भरे एक भी अगर गुम हो गया तो वो कितना सोचेगा कहाँ गया एक ढूंढेगा पूरा भरा हुआ था गिन के थे एक एक पॉइंट एक एक रत्न है एक एक लाखों के एक एक वर्षन क्योंकि कहाँ किसने है वो कहने वाला कौन है तो आगे हाँ मैं विचार सागर मंथन के बारे में कह रहा था सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि उससे ज्ञान हमको स्पष्ट होता है दूसरा वो ज्ञान हम दूसरों को तभी समझा सकते हैं जब हमने समझा है उसको तो दूसरों को समझाने के लिए भी वो पहले हमको बहुत ज्यादा स्पष्ट चाहिए तब तक वो समझ में नहीं आता है क्या और भी कुछ विचार सागर मंथन से फायदे व्यर्थ से ऑटोमेटिक आज बोला बेहद की सेवा में बिजी रहो तो ऑटोमेटिक व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे बेहद का वैराग्य ऑटोमेटिक आ जाएगा इस सेवा में बिजी रहो तो वैसे ही इस सेवा में अगर इस चिंतन में बिजी रहोगे तो व्यर्थ आने की मार्जिन नहीं है ऑटोमेटिक मन लगा हुआ रहेगा सुबह जो मुरली सुनी उसके किसी एक पॉइंट को पकड़कर उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालना चाहे वो दूसरों से या कहीं किताब से या कहीं से भी या खुद के चिंतन से दूसरों के चिंतन का भी हमको आधार लेना है किताबों का भी आधार लेना है कुछ अच्छे लेक्चर्स है उनका भी आधार लेना है सबका आधार लेकर हमको अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ाना है तो विचार सागर मंथन से तो बहुत सारा होता है जैसे गाय का उदाहरण हमेशा देते हैं जो गाय उगाती नहीं वो क्या है बीमार है जो गायती नहीं
सर्जन धैर्य देते हैं बीमारी आएगी
कमरे के सामने कमरे से मैं जब रोज निकलता हूँ अमृत वेले के लिए कमरे के सामने एक गाय बैठी रहती है जब भी निकलता हूँ चाहे 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे वो चालू रहता है उसका, बहुत प्रेरणादायक है। रात भर विचार सागर मंथन की, मतलब उसका उगारना चालू रहता है।
तो पूछा है गैया माता क्या विचार रहा है मंथन करने का?
जो गाय उगारती नहीं उसे बीमार समझा जाता है, जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं कहते वो गोया बीमार है,
बीमारू बच्चे।
सुदेश बहन ने क्लास कराया इस पर कि मंथन थन से दूर निकलता है और वो थन ऐसा बन जाए मंथन कि वो दूध बन जाए और दूध को पीने से इतनी शक्ति बन जाए
मन का थन बन जाए।
बड़ा डिटेल किया उन्होंने,
बहुत सुंदर बताया।
आगे तो ये तो वो फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, तब हम कौन है? पर्सनैलिटी,
रूहानी
पर्सनैलिटी। संसार में भी बाबा ने कहा पर्सनैलिटी वाले हैं। किस आधार से बने हैं? तीन आधार बताए, एक तो आत्माओं के द्वारा, विनाशी धन या ऑक्यूपेशन, विनाशी ऑक्यूपेशन के द्वारा, और एक तीसरा विनाशी धन के द्वारा, एक विनाशी संपत्ति धन के द्वारा पर्सनैलिटी हो। पर तुम जो श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है तुम्हारी, वो किसके द्वारा?
ऊंचे
से ऊंचे बाप के द्वारा बनाया हुआ, इसके लिए तुम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। सारे कल्प में तुम्हारे जैसी पर्सनैलिटी किसी
किसी की नहीं
है। देवता तो बन नहीं सकते
देवता, हमारी पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि बाबा ने कहा कि उनके पास कौन सा खजाना है? विनाशी खजाना
है। आया गया,
आया और गया। तुम्हारा खजाना कैसा है?
लूट नहीं सकता कोई,
कोई लूट नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, अविनाशी है, सदा इस खजाने से भरपूर हो, अखूट है, ऐसा तुम्हारा खजाना
है।
कौन सा खजाना है ये? सुख और शांति उनके पास, वो मांगते हैं बाप के पास।
वो तुम्हें इतना ऊंचा बनाते,
वो तो मांगने वाले हैं, उनके पास ये खजाना नहीं है, वो खाली है इस खजाने से। बाबा ने क्या कहा? वो इस खजाने से
खाली
है और तुम इस अविनाशी खजाने से सदा भरपूर हो। तो श्रेष्ठ पर्सनैलिटी, खरब पति अरब पति भी खाली है, वो मांगते रहते हैं, कुछ नहीं है तुम्हारे सामने,
सामने कुछ
नहीं। आज है कल नहीं, ऐसी विनाशी वस्तु है नहीं। उसमें सुख तो है पर अल्पकाल का सुख है, ऐसा नहीं कि उसमें सुख नहीं है, सुख है। एक किसी ने बहुत अच्छा कहा है, धन की, धन का क्या उपयोग है? धन, व्हाट आर द बेनिफिट्स? संपत्ति है ना, उसकी बहुत जरूरत है। उसने कहा किस लिए? जब संपत्ति बहुत होती है उसके बाद ही पता चलती है धन की व्यर्थता के बारे में। जब तक धन नहीं है ऐसा लगता है वो चाहिए, पर इसको कोई अगर पहले से उसको अनुभव कर ले कि जरूरत नहीं है उसको पाने की, फिर धन पाने का एक ही फायदा है कि वो कितना व्यर्थ है ये समझ में आता है अनुभव के बाद। व्यर्थता, क्योंकि धन सब कुछ नहीं खरीद सकता है। तो हमारे पास अविनाशी सुख है, अविनाशी शांति है, ये हमारी रूहानी पर्सनैलिटी है।
संकल्प में भी, स्वप्न में भी।
फिर उसकी डेफिनेशन क्या बताई बाबा ने? स्वप्न और संकल्प में भी संपूर्ण
प्योरिटी।
अगर तुम्हारी प्योरिटी बार बार ब्रह्मचर्य खंडन होता है तो वो भी विकर्म बनता है, तुम संपूर्ण नहीं बन सकते। एक अव्यक्त वाणी है बाबा की, अगर किसी श्रेष्ठ पुरुषार्थी से सूक्ष्म में छोटे छोटे पाप होते रहते, सूक्ष्म में खाली मनसा में, तो भी वो अपवित्रता तुमको संपूर्ण नहीं बनने देगी।
संपूर्ण स्टेज के लिए वो दाग
है, दाग यहाँ छिप नहीं सकता। संकल्प में भी अगर अपवित्र संकल्प आ रहे हैं तो वो भी हमको संपूर्ण नहीं बनने देंगे, बाकी सब चलेगा पर प्योरिटी मुरली चलेगा। काम जीत ही
जगत जीत,
क्रोध जीत जगत जीत नहीं है,
नहीं।
लोभ जीत जगत जीत नहीं है, अहंकार जीत जगत जीत नहीं है, काम जीत ही
जगत जीत। संकल्प बोल कर्म भी,
वो पवित्रता की गुह्य परिभाषा है,
संपूर्ण पवित्रता,
संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से साधारण या व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। अक्टूबर 2010
ग्यारह की
दिवाली से पहले वाली मुरली चली थी 1 अक्टूबर 24 अक्टूबर।
कमाल देखो समर्पण संकल्प।
तो और आगे आते हैं तो प्योरिटी। तो बाबा ने कहा कि संकल्प और स्वप्न में भी
संपूर्ण
प्योरिटी। प्योरिटी में अगर कहीं दाग है तो वो आत्मा पुरुषार्थ नहीं कर सकती। क्रोध अगर है शायद पुरुषार्थ कर लेगी, लोभ है फिर भी पुरुषार्थ चलेगा, जो भी है पर चलेगा
6 मास के बाद।
परंतु यदि काम में अगर हार होती है, काम जीत में विकार के संकल्प यदि आत्मा में उत्पन्न
कर नहीं पाएगा तो शायद,
तो तब वो सब कुछ बाकी सब सेवा कर सकेगा, बाकी सब कर सकेगा पर पुरुषार्थ नहीं कर सकता।
प्योरिटी में अगर खंडन है तो पूर्णता,
बाकी सब चलेगा पर पुरुषार्थ नहीं। ये भूयता है पवित्रता। इसके लिए बाबा ने कहा अगर किसी की देह को संकल्प और नजर से भी देखते हो तो ये भी क्या है,
सांप को देखना,
सांप को देखना, और सांप को देखना है ये
जहर
विष जहर और एक चीज महा 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 पाप संकल्प और टच करने के लिए बात, टच करने की बात है, देखने के लिए टच करने की बात,
संकल्प से,
संकल्प से या नजर से भी किसी को टच करते देह को
सारा खेल
देह और आत्मा का। तो अगर किसी को देखते हो तो खाली आत्मा ही देखे।
इसलिए बोला ये समझो मैं शरीर में हूँ ही नहीं,
मरा हुआ हूँ।
ऐसे समझो कि जैसे ये जहर अभी हमारे अंदर, वहाँ तो काटने पर जहर दिखता है, यहाँ केवल देह की तरफ देखा तो जहर अंदर
आपने दसा
माल खत्म खजाना खत्म।
प्यूरिटी ही रॉयल्टी है, प्यूरिटी ही पर्सनैलिटी है, प्यूरिटी ही रॉयल और श्रेष्ठता है, प्यूरिटी ही पब्लिसिटी है, प्यूरिटी ही नवीनता है। इस विश्वविद्यालय की सारा विश्वविद्यालय में सारे हंगामे सारे झगड़े किसके वजह से हुए, प्यूरिटी के वजह से। कोई दूसरा कारण था? प्यूरिटी को हटा लिया जाए तो सारा संसार आ जाए इधर, आज के आज सब आ जाएंगे पूरे लोग, कोई विरोध नहीं होता अगर इसको हटा दिया होता।
तैयार
सारे तो संसार में किसको अच्छा नहीं लगता, अध्यात्म आ जाएंगे सारे के सारे सुख शांति के लिए। एक ही कारण है यज्ञ में हंगामा होने का, प्यूरिटी। प्यूरिटी ही आधार है, प्यूरिटी आधार स्तंभ है, प्यूरिटी विशेषता है, रॉयल्टी प्यूरिटी पर्सनैलिटी नॉवेल्टी प्यूरिटी है, पब्लिसिटी।
बाप
ने आया है ज्ञान ही दिया, सतयुग त्रेता और द्वापर कलयुग का सीमा रेखा क्या है, एक ही है प्यूरिटी। काम वहाँ काम नहीं है, यहाँ काम है, बस ये एक ही डिफरेंस है।
यहाँ राम नहीं है वहाँ राम है।
राम
राम का राज्य है ना।
इसके लिए जिस जिस बात से प्यूरिटी खंडन होती है, चाहे वो टीवी देखना है चाहे वो नॉवेल्स पढ़ना है, अगर किसी को नॉवेल पढ़ते देखो तो
पढ़ दो पकड़
क्या कर दो
पढ़ दो तुरंत,
इसमें घबराना नहीं है। किसी को नॉवेल पढ़ते देखो तो बाबा ने कहा नॉवेल को
साकार मुरली
फाड़ दो, साकार मुरली। बायोस्कोप सिनेमा ये सब क्या है, नरक के द्वार। कोई कहते हैं ये सीरियल बहुत अच्छा है, कोई कहते हैं ये मूवी बहुत अच्छी है, ये क्या है, अच्छा धार्मिक सीरियल भी है बट उसमें जो एक्ट कर रहे हैं उनका चरित्र क्या है,
वो भी उनकी भी बैकग्राउंड,
उनकी बैकग्राउंड क्या है, क्या वो चरित्रवान है, जो भी। और जो मूवी होती है वो 3D होती है। एक किताब किसी ने पढ़ा 10 साल के बाद, पूछा क्या था किताब में, याद नहीं। अगर किसी ने एक मूवी देखी 10 साल पहले वो पूछी क्या थे, सब याद है। क्यों? क्योंकि वो मूवी में वो 3D 3D है, 2D बुद्धि भूल जाती है, याद नहीं रहता है मन, ये टेंडेंसी है। जो चलता फिरता चीज होती है वो इमेज है ना, वो ज्यादा याद रहती है।
इसके
लिए कुछ 10 मिनट भी अगर देख लिया कुछ, चाहे वो एडवर्टाइज हो, पर वो आत्मा में स्मृति पटल में छप जाता है, वो संस्कार में घुसता है, स्वप्न में वही निकलता है वापस।
इसलिए तीन पुरुषार्थी ग्रुप ने प्रतिज्ञा किया है कभी भी टीवी नहीं,
टीवी इंटरनेट ये सब क्या है? मार
लेकिन टीवी भले छोड़ा होगा, मोबाइल हाथ में भी टीवी है,
वो भी साधन जरूरी है, परंतु
पीछे पड़ी हुई है।
साधन को कैसे हम उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि जिसको एक बार उसमें रस उत्पन्न हो गया वो उसके बगैर नहीं रह सकता।
बात रस की है सारी।
रस है ना, उसमें रस है, एक देह में रस है, देह में आकर्षण है, देह की स्मृति, देह का लगाव, देह की आकर्षण, यही आत्मा को कमजोर करता है।
चिंतन,
देह की चिंतन चलती रहती है। बाबा ने कहा ना, ये बहन बहुत अच्छा मुरली सुनाती है, अरे बहन बहुत मीठी है, तो बाबा क्या कहते हैं, अरे बहन मीठी नहीं है,
मुरली
मीठी है, ज्ञान मीठा है, क्या शरीर मीठा है? मीठी तो आत्मा है ना, शरीर मीठा है क्या?
ज्ञान मीठा, बाप मीठा।
आगे कहाँ थे हम? प्योरिटी, संकल्प और स्वप्न में। तो बाबा ने कहा तुम्हारी पर्सनैलिटी की निशानी क्या है? नेक्स्ट प्रश्न होगी वहीं पर।
प्रसन्नता,
नयन,
नयन,
चलन,
चलन,
चेहरा,
समय और संबंध,
और
संबंध,
इसमें क्या
प्रसन्नता
जो बाप के लिए गायन है, नयनों से
निहाल,
एक नजर से, नजर से निहाल करने का, वो केवल बाप के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी। कोई भी परेशान, कोई भी अशांत आत्मा अगर आ जाए तो उसको भी सेकंड में क्या करो, नजर से प्रसन्नता। और एक पॉइंट है, कौन सी?
चेहरे चलन से पवित्रता दिखाई दे, एक मस्तक से दिखाई दे।
बाप दादा आज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बच्चों के चलन और चरित्र को देख रहे हैं, चित्र और
चित्र
देखते रहते, देख रहे। एक तो सबसे पहले देखा श्रेष्ठ पर्सनैलिटी को देख रहे, दूसरा देखा चित्र को देख रहे, तीसरा बोला चलन को देख रहे, और एक देख रहे चैतन्य सजी हुई मूर्तियों को देख रहे। आगे बाप दादा कहाँ से निकली है मूर्तियाँ? मंदिरों से आई हुई, अभी अभी शांतिवन में पधारी है। दिलवाड़ा का भी पॉइंट है, वो दूसरा है आगे। तो बाबा ने क्या कहा, इनको भी देख रहे हैं बाबा, इनको देख रहे हैं सजी हुई चैतन्य मूर्तियाँ, जैसे कि मंदिरों से निकल कर अभी अभी आई है। तो मंदिरों का क्या हाल हो गया? मंदिर खाली हो गए होंगे, भक्त भी दौड़ते दौड़ते यहाँ आ जाएंगे कि हमारी देवियाँ कहाँ है। तो इनको भी बाप देख रहे हैं। फिर निशानी क्या है? निशानी ये है प्रसन्नता। किस किस से प्रसन्नता? नयनों से प्रसन्नता,
चेहरे से,
चेहरे से प्रसन्नता, चलन से प्रसन्नता,
समय से प्रसन्नता, समय,
समय, समय नहीं, संबंध से प्रसन्नता, संकल्प है, संकल्प, नयन, चलन, संपर्क, संबंध, प्रसन्नता दिखाई दे।
पांच पांच,
तो संकल्प में भी प्रसन्नता, संकल्प में भी दुखी नहीं होना है। बाबा कहते ना रोना, दो प्रकार के रोना, आंखों का रोना, मन का रोना। तो मन से भी नहीं रोना है, रोना अलाउ नहीं है, लॉ नहीं है यहाँ पर। हाँ, विधवा है जो रोते हैं वो कौन है?
विधवा
वो मोती है। बाबा ने कहा बाप की याद में आंखों से आंसू आ जाए, रोमांच खड़े हो जाए, वो सेंसिटिव नेचर है। अभी वो विचार सागर मंथन की बात है कि कोई दुख का, दर्द का सीन देखे तो रोना आ जाता है। उसमें रोना चाहिए, नहीं आना चाहिए? किसी का दुख देख के हमको रोना आ जाए, नॉट अलाउड। एक ही आंसू अलाउड है, बाप के प्यार में यदि आंसू आते हैं बस, ओनली दोस्त टीयर्स आर अलाउड, बाकी कोई भी टीयर्स अलाउड नहीं है इधर, चाहे कुछ भी हो जाए। भावना जो है अध्यात्म अर्थात धीरे धीरे भावनाओं को नष्ट करना,
ज्ञानयुक्त भावना चाहिए।
सेंसिटिव नेचर जो है वो अध्यात्म में बाधा है।
और
वो भावना आत्माओं में है वो जो अलग बात है, परंतु ये एक बाधा है। अध्यात्म अर्थात बहुत कठोर मार्ग है, संन्यास मार्ग है,
कठोर दिल।
अच्छा ठीक है, हम घर से निकल रहे हैं, रो रहे सारे, अरे ये करो वो करो, ये कर लो वो कर लो, तो ठीक है अभी हम देखा नहीं जा रहे उनके दुख को, कहते हैं शादी कर लो, हम क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे। तो वो तो उसमें यही है ना, बाबा ने कहा है एक साकार वाणी है कि बच्चे बाप से कहते हैं बाबा घर वाले परेशान कर रहे हैं शादी करो, तो बाबा कहते हैं अच्छा ठीक है भले कर लो, पूछ रहे हो तो इच्छा है करने की। फिर आगे की लाइन है मुरली की, बहुत जबरदस्त खतरनाक,
मना कर दी बाबा तो,
यदि बाप के प्यार में यदि सर भी कट जाए तो भी ऊंच पद पाओगे, यदि बाप के प्यार में मर भी गए तो भी ऊंच पद पाओगे।
पहले तो सरकार में मामा के टाइम भी सरकारी जल गए, मर गए,
वही ना
बाद में।
तो यहाँ तो कठोर बनना है, ये सेंसिटिव नेचर जो है ये अध्यात्म में बाधा है, इसके लिए आंसुओं को चीतना है। जो वीर योद्धे होते हैं वो रोते हैं, अगर कोई वीर मर जाता है तो उसके सैनिकों को, दूसरों सैनिकों को आदेश होता है कि उसके लिए नहीं रो, क्योंकि वो वीर गति को प्राप्त हुआ, उसके लिए रोया नहीं जाता है। मार्टर, हाँ, रोना अलाउड ही नहीं है। रणभूमि में कोई रोता है कि हमारी कहाँ, हम कहाँ खड़े हैं
रणभूमि,
रणभूमि में हम कौन है, योद्धे हैं। और हमारा दुश्मन कैसा है, रुस्तम के साथ रुस्तम, बलवान के साथ बलवान, पहलवान के साथ पहलवान, महावीर के साथ महावीर है वो, जो जितना तुम जो पहले अज्ञान में भी जो ख्यालात नहीं आते वो ज्ञान में आने के बाद आएंगे। अभी मुरली थी ना, जो पहले भी नहीं आते तो अभी, क्योंकि माया की तुमसे, यू आर एट वार विथ माया, जगदीश भाई ने कहा है, ये लड़ाई भी है, ये चढ़ाई भी है, ये पढ़ाई भी है, लड़ाई चढ़ाई और
पढ़ाई,
तो ये लड़ाई है माया के साथ, माया को तो हराना है, इसमें रोना नॉट अलाउड, चाहे कुछ भी हो, रोना यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, रणभूमि है ये, रणभूमि में कोई रोता है क्या, अगर कोई रोया तो फेल। चलो आगे क्या बोला, प्रसन्नता के बारे में, पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता कभी
छिप
नहीं सकती, तो बाबा ने कहा चेक करो कि ये सदा इमर्ज है ही नहीं
है,
दिखाई दे अनुभव करो, है ही नहीं
दिखाई दे
है, दिखाई दे अनुभव करो,
और फिर कराओ नजर से निहाल सके,
प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना है।
कैसी भी आत्मा आ जाए, चाहे कैसी भी आत्मा आ जाए, अभी बोला ना अवरदान में, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, कैसी भी आत्मा है उसे निस्वार्थ प्रेम अलौकिक में ईश्वरीय स्नेह का अनुभूति कराना ही बीज बोना है। तो इस बीज को बो तो वृक्ष निकलेगा, कौन सा, सहयोगी, और फल निकलेगा सहयोगी, आत्माओं को अनुभव कराना है, स्वतः सहयोगी, अनुभव करा दो आत्मा को, आत्माएं आए। बाबा ने एक बहुत अच्छी मुरली चली है, अव्यक्तवाणी है, जिसमें कहा है कि यदि वो जो संसार में भाषण, टीचर बहनों से बात करते हुए, समर्पित बहनें टीचर्स, वो जो संसार में भाषण करते हैं वो दूसरी आत्माओं को रुला सकते हैं, हंसा सकते हैं, वो जो एक्टर्स है फिल्म के एक्टर या भाषण करने वाले, वो हंसा सकते हैं रुला सकते हैं, परंतु अशरीरी नहीं बना सकते। सभा में ऐसा भाषण करो कि सभा में ईश्वरीय प्रेम की लहर फैलाए, ये वो नहीं कर सकते। बहुत सुंदर मुरली है ये, अव्यक्तवाणी है बाप दादा। एक है दूध के बारे में भाषण करना है, अभी लोगों को दूध समझाना है, जिन्होंने कभी दूध ही नहीं पिया है, ठीक है, मैंने एक घंटा भाषण किया कि दूध सफेद है, दूध बहुत अच्छा है, दूध को पीने से ये फायदे है, सब लोग देख रहे थे, और दूसरा एक आता है सबको दूध पिला देता है। ये है दूध अनुभव, डायरेक्ट अनुभव। एक है बस ज्ञान सुनाना, और अनुभव हो जाना चाहिए, आत्मा को पता चल जाए कि ये है वो, जो उनको पता ही नहीं था ईश्वरीय प्रेम क्या है, वो उनको पता चल जाए तो संसार के सारे सुख
ठीक है
उनके, ठीक हो जाएंगे इसके सामने, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख के सामने, ईश्वरीय प्रेम के सामने, संसार में जो कुछ है कुछ नहीं है। तो ऐसा भाषण करो, अनुभव करा दो आत्माओं को। अध्यात्म में दो शब्द है, भक्ति में भी ज्ञान में भी, उधर भी ज्ञान और विज्ञान शब्द कहा जाता है। तो ज्ञान अर्थात ज्ञान और विज्ञान अर्थात अनुभव कराना, इसको विज्ञान माना जाता है वेदांत में भी। संन्यास मार्ग जो है उसमें भी वेदांत में विज्ञान शब्द आता है। तो अनुभव करा देना आत्माओं को, चाहे अनुभव इधर आत्मा शिविर में आए इधर चार दिन के लिए, क्या लेक्चर्स चल रहे हैं उसमें उनको वो याद नहीं रहेगा, पर किसी ने उनको अनुभव करा दिया 10 मिनट अशरीरीपन का, वो नहीं भूले, बाकी सब भूल जाएंगे। वो लेक्चर याद रहते किसी को,
इसलिए तुम्हारे पास अनुभव की अथॉरिटी है।
हाँ, बाप ने तुमको अथॉरिटी दी है, या अभी मुरली चली ना, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने तुमको ऑलमाइटी अथॉरिटी दी है, सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती, गीता जयंती, कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाओ। भी चली ना परसों सैटरडे को, तो बाप ने तुमको अथॉरिटी दी है, किसी मनुष्य ने अथॉरिटी नहीं दी है, बाप ने दी है ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। चलो आगे, निशानियाँ हो गई ना,
निशानियाँ हो गई, अनुभव भी करा दिया,
वो भी हो गया। और बाप की, बाप के लिए जो गायन है नजर से निहाल
निहाल करने
के, केवल बाप के लिए नहीं है,
तुम्हारे के लिए। 40 साल की बात आई जो
और स्मृति स्वरूप रहा। उसके बाद में बाबा ने बोला जो 40 साल हो चुके हैं, तो ऐसे नहीं समझो किसी को कम ज्यादा होंगे, वो होगा
बड़ी निमित्त बना दिया उन आत्माओं ने जो दादी है। पहले निमित्त ही वो गुप्त
दो ग्रुप बाबा ने बताया इसमें,
उदाहरण दिया।
हाँ, वो एक तो वो कि जो स्थापना के निमित्त है, जो जड़ है और जो गुप्त है, और एक जो सेवा, सेवा के आदि में जो है, हाँ सेवा के आदि रतन, वो है तना, वो है तना 50 के ऊपर वाले, वो है तना, वो है प्रत्यक्ष, वो है दिखाई देने वाले, वो है प्रैक्टिकल वाले, और नीचे वाले जड़ है, वो है गुप्त, वो है सकाश देने वाले। ऐसे अलग अलग शब्द बाबा ने अलग अलग जगह यूज किए। तो बाबा ने क्या कहा जो सेवा वाले, सेवा वालों को
जैसे कहा ब्रह्मा बाप एक स्थान पर होते हुए इतनों की पालना,
जैसे अव्यक्त बाप एक स्थान पर, एक स्थान पर बैठकर अनेकों की पालना की, वैसे तुम भी
कर सकते, अनेकों की पालना कर सकते।
दूर सकाश दोगे तो नजदीक वालों को ऑटोमेटिक मिल जाएगा, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
लेटे लेटे भी सकाश दे सकते हो,
दीवार के लिए, सबके लिए नहीं, एक है गुप्त, गुप्त योग पता है ना, गुप्त पुरुषार्थ, बाजू वाले को भी ना पता चले, मतलब बाहर लोगों को पता ना चले कि हम अमृत वेला कर रहे हैं, कमरे में ही बेड पर ही, बाजू वाले को भी नहीं पता चले, इसके लिए रजाई ओढ़कर एकदम गुप्त, वो है एकदम सबसे पावरफुल गुप्त पुरुषार्थ की, जिसमें बाजू वालों को भी ना पता चले कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इतना अपने आप को छुपा दिया, बहुत पावरफुल पुरुषार्थ है ये, ठीक है ना,
गहराई में चले
गए, गहराई में चले गए एकदम, मतलब कोई दिखावा नहीं है उसमें, कमरे वालों को भी ना पता चले कि हम, वो सोचे कि हम सो रहे हैं पर हम
अपने को पता चल पा रहा है कि
तो ये नहीं करना, ठीक है ना,
इतने मत छिप जाओ,
इतने भी मत छिप जाओ। बाप को पता है किसमें ज्ञान है किसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञानी आत्मा छिप नहीं सकती, ज्ञानी और योगी आत्मा छिप नहीं सकती। अभी मुरली चली,
ज्ञान और योग के पहले ज्ञानी है, लेकिन योग वाले
ज्ञानी है परंतु योग का
नहीं
है, बांधेली और गरीब, योग ज्ञान कम पर याद ज्यादा, और यहाँ बाकी जो दूसरे है उनमें
ज्ञान वाले भरी ढोएंगे उसके आगे।
हाँ, ज्ञान वाले अज्ञानियों के आगे, अज्ञानी ज्ञानियों के आगे भरी ढोएंगे, पढ़े और अनपढ़े। तो वही बोला ना, ज्ञान तो चाहिए पर साथ में तलवार, गुरु गोविंद सिंह की तलवार बोली ना, विलायत में चली गई, अभी न्यूजीलैंड में है, म्यूजियम में, विक्टोरिया से वहाँ चली गई, वजन तो पता नहीं मुझे भारी है बहुत। तो बाबा ने कहा कोई पाई पैसे की भी तलवार होती है,
दो पैसे
ऐसी भी, हाँ दो पैसे की भी तलवार होती है।
तो न्यूजीलैंड गुरुद्वारे में रखी है,
वो पता नहीं म्यूजियम में है। तो तलवार में, ज्ञान की तलवार में योग का जबर चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। फिर तुम तना क्या करता है, प्रकाश देता है। टाल डालिए तना से, सब कुछ शाखाएं सारी टाल तना से ही निकलती है। तो क्या समझते हो अपने आप को, राज्य का, किसी स्टेट का इंचार्ज या राज्य का इंचार्ज या जोन का इंचार्ज, विश्व का राज्य लेना है या किसी स्टेट का राज्य लेना है। बाबू ने पूछा
200-250
जो भी है,
9 लाख
9 लाख और 8 ले, इसकी भी बात बोली ना, 33 करोड़
की बोली है, 33 करोड़ भी है
उसके सामने, तो ये कुछ नहीं है। तो अभी महारथी अर्थात सर्व को सकाश देने वाले, महारथी अर्थात सबको सकाश, बेहद में रहने वाले, दूर सकाश देने वाले, तो नजदीक वालों को ऑटोमेटिक सकाश जाएगी। ब्रह्मा बाप भी रात को उठते हैं तो क्या करते हैं, सकाश देते, एक स्थान पर बैठकर सारे विश्व को सकाश देते, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, ये पूरा इसमें, फिर उसके बाद में नाजुक परिस्थिति के बारे में बताया ना, जब तुम ज्ञान में आए थे उस समय, तो सहन किया क्या, ऐसा अनुभव किया नहीं, किया ना, देखा और फिदा हो गए, देखा और खो गए,
कुछ भी बाद में
बाप को देखा तो कोर्स ब्राह्मण बन गए। तो ब्रह्मा बाप ने कोर्स कराया क्या,
बाद में किया,
और बाद में किया,
अभी ट्रेनिंग करते हैं।
तो अभी क्या करते हो तुम, ट्रायल करते हो, ट्रेनिंग करते हो, फिर ट्रायल करते हो, आधे रहते आधे चले जाते हैं, तब ट्रेनिंग ट्रायल की है। तो अभी भी तुम आत्माओं में, तुम ब्राह्मण आत्माओं में दूसरों को ब्रह्मा बाप दिखे,
बाप जरा समा जाए,
जैसे ब्रह्मा में बाप दादा बाबा समाया हुआ था, वैसे तुम आत्माओं में भी बाप दादा समाया हुआ हो,
तब वो अनुभव करा
सकोगे आत्माओं को। कंबाइंड स्वरूप में रहो, बोला ना मुद्दिल, आप और बाप कंबाइंड स्वरूप में रहो तो आत्माओं को अनुभव होगा। और भी कुछ बोला, फिर वो लेटे वाली, वो वाली बात बात है, वीजा की जरूरत नहीं है, लेटे लेटे भी कर सकते हो, शरीर से जा नहीं सकते तो मन से तो जा सकते हो, समय की बात नहीं, तबीयत की बात नहीं, फास्ट सेवा करो, अभी बेहद की सेवा करो, बेहद के सेवा के मैदान में उतरो। बच्चे पूछते हैं कि बेहद का वैराग क्यों नहीं है, तो बेहद की सेवा में बिजी हो जाओ तो स्वतः ही बेहद का वैराग आ जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा ना उसी मुरली में, फिर उसके बाद में पूरी मुरली साइलेंस की शक्ति के ऊपर, 200 सेंटर विदेश में, विदेश के सुन रहे हैं। तो भारत का आवाज विश्व में साइंस ने पहुंचा दिया, ये उसकी फास्ट गति है, साइंस की फास्ट गति है। तो साइलेंस की फास्ट गति कहां तक है, अब साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो, साइलेंस की शक्ति से तुम्हारे दिल की शुभकामना आत्माओं तक नहीं पहुंचा सकते, जब वो साइंस से पहुंचा सकते आवाज को, तो तुम अपनी शुभकामनाएं नहीं पहुंचा सकते। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं कह सकता कि मुझ में साइलेंस की शक्ति नहीं है, हर ब्राह्मण आत्मा में साइलेंस की शक्ति है। प्रत्यक्ष करो साइलेंस की शक्ति को, अब प्रत्यक्ष करो,
दिल का गीत, दिल वाले,
हाँ वो एक तो बीच का रह गया। तो बाबा ने कहा बाप दादा भी बच्चों को देख हर्षित होते और गीत गाते, तो बाप दादा का गीत सुनाई देता है,
कान कान की जरूरत,
ये कान के लिए नहीं है, ये दिल का गीत दिल वालों को सुनाई देता है, दिल वाले ही जानते हैं, ऑटोमेटिक है ये टेप,
टेप की बात
ही, ये टेप ऑटोमेटिक है। वैसे टेप कहते हैं, बाबा कहते टेप के लिए, टेप मेरा सबसे आज्ञाकारी बच्चा
अच्छा है।
जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही रिपीट करता है। सबसे आज्ञाकारी बच्चा मेरा टेप है। सब खांसी मिस नहीं होती, अरे बाबा खांसी भी मिस नहीं होती। तो ये थी आज की मुरली, स्लोगन वरदान, कौन सी आत्माएं हो तुम, सदा संतुष्ट रहने वाली और
करने वाली,
दृष्टि वृत्ति कृति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का अनुभव कराने वाली। तुम संतुष्ट रहते हो तो क्या होता है, बहुत सुंदर वाक्य आगे, तुम्हारे संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में संतुष्टता है तो बाप दादा क्या करते हैं ऊपर से संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा, संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा होती है। तो वो क्या हो जाते हो तुम, संतुष्ट मणियां। अगर ऐसे संतुष्ट मणियां है वही बाप दादा के गले की हार है, विश्व राज्य अधिकारी है, भक्तों के सिमरन की माला है। तीनों बातें हो जाती है। स्लोगन रुको, अभी बुलाओ इधर राजू भाई, अभी इधर का बंद, अभी इधर से चालू। सारे कोई भी स्लोगन बताओ, चलो एक हफ्ते का। सहनशील क्यों करना है, क्योंकि ये बाप की आज्ञा है। एक मुरली चली है इसके ऊपर। क्यों सहन करना है, क्योंकि ये बाप की आज्ञा है, इसके लिए हम सहन कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे, वो व्यक्ति के लिए नहीं, क्योंकि ये बाप की आज्ञा है। सहन करो, इसके लिए सहन करो,
बात को नहीं।
हाँ, एक मुरली बाबा ने 92 की मुरली है, दादियों से मुलाकात 92 की मुरली एक है, जिसमें दादियों से बाबा बात कर रहे हैं। हैमर, जितना हैमर लगेगा, हैमर शब्द यूज किया बाबा ने, तभी मूर्ति बनी। कुछ नहीं मूर्ति तभी बनी। तो सहन तो करना पड़ेगा, बिना सहन किए कोई भी धर्म की स्थापना आज तक नहीं हुई है। धर्म स्थापना पवित्रता के बल से हुई है। मुरली चली ना अभी, सब धर्म स्थापकों को सहन करना पड़ा। तो तुम बिना सहन धर्म सहन किए धर्म की स्थापना कैसे कर सकते हो, ये भी तो सभा, ये भी तो धर्म है।
तो ज्ञान में सब सहन करना ही पड़ेगा,
सब कुछ सहन करना पड़ेगा, निंदा स्तुति सब सब सब
सहन करना ही, उसके दिलों में झूलना है।
जो सहन करेंगे वही
सहन
शाह बनेंगे।
ज्ञान में लड़ाई नहीं तो ज्ञान को समझे ही नहीं। मन
सहन करना, बाबा ने कहा अभी दो तीन दिन पहले, कैसी अवस्था चाहिए, धैर्यवत अवस्था। तुम्हारी धैर्यवत अवस्था चाहिए, धीरज। 17 तारीख की मुरली धीरज पर चली ना, धीरज बाप धीरज देते, सर्जन धीरज देते, बीमारी ठीक हो जाए। थोड़ा समय बाकी है, बस थोड़ा ही समय बाकी है। तो ये धीरज का जो गुण है ना, धैर्य धीरज, इसका और सहनशीलता का बहुत ज्यादा कनेक्शन है। धैर्य और सहनशीलता,
धैर्य के रखने के साथ सहनशीलता बढ़ती है।
धैर्य एक बहुत चिंतन का विषय है कि धैर्य क्यों खोया जाता है हमारा, इस पर सब चिंतन करके आओ नेक्स्ट टाइम। जैसे एक उदाहरण, धैर्य कब खोता है, जब टाइम कम है,
बहुत कम
टाइम है, वहाँ पे हमारा धैर्य खो जाता है। कुछ ट्रेन पकड़नी है, ऐसे मतलब ऐसी बहुत सारी सिचुएशन से, ट्रिगर फैक्टर से, व्हाट आर द कॉजेस, कारण क्या क्या है धैर्य खोने के, ट्रिगर फैक्टर कौन कौन से, क्या क्या हो जाता है धैर्य खोया जाता है, और फिर उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या करना। भूख अभी चाहिए, गलत आरोप लगाने पर धैर्य खोया जाता है। एक है कि हम पर इल्जाम लग, हमने गलती की और किसी ने कहा हमको डाटा, इल्जाम लगाया, वो एक है। एक है हमने किया ही नहीं कुछ, फिर भी इल्जाम लग रहा है, वहाँ धैर्य की आवश्यकता है।
भूख लगती है और ईमान डगमगाने लगता है।
तो धैर्य के ऊपर चिंतन करना। चलो और दूसरी पॉइंट,
गुस्सा करता है जो ड्रामा के राज को नहीं जानते,
नाराज होते हैं। जो ड्रामा को राज को जानते हुए भी नाराज होते हैं, उनको क्या कहेंगे, वो शायद जानते ही नहीं। ड्रामा रिफाइंड बना हुआ है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा बाप को पसंद है तो तुमको भी पसंद आना चाहिए। ड्रामा में अदली बदली नहीं हो सकती, ड्रामा में कोई फेरबदल नहीं हो सकता, ड्रामा में सब आत्माएं
निर्दोष,
केवल निर्दोष नहीं, संपूर्ण निर्दोष। ड्रामा में किसी की कोई गलती नहीं है, ड्रामा फाइन बना हुआ है, ड्रामा कल्याणकारी है। अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छिपा हुआ है, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा छिपा हुआ है। ड्रामा न्यायपूर्ण है, ड्रामा विविधतापूर्ण है, ड्रामा परफेक्ट है, एक्यूरेट है, जरा भी इसमें गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ हमको दिखती है क्योंकि
हम
छोटे से देखते हैं,
वर्तमान
थोड़ा ही देखते हैं, हम अपने फायदे का देखते हैं, स्वार्थ की नजर से देखते हैं। इसके लिए मैं भी ड्रामा के वर्ष, ड्रामा कब चालू हुआ, कब पूरा होगा, कहाँ नहीं जा सकते, अभी चली ना बोलिए ड्रामा बनाने वाला ही ऐसा कहता है कि कहाँ नहीं जा सकता है? आत्मा कब प्रवेश करती है शरीर में? तिथि तारीख नहीं है, परमात्मा
याद नहीं है।
वो भूलानाथ भी है ना, भूला हुआ है सर, भोलेनाथ के साथ साथ शिव बाबा भूलानाथ भी है,
भूलानाथ
उसको कुछ याद नहीं रहता, चित्त पर नहीं रहता,
भूलाता नहीं, पता चलेगा लास्ट में।
मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ। अगर किसी बच्चे का चार्ट अभी दिखाया जाए तो मैं अभी बता सकता हूँ क्या बनने वाला है। ये वाक्य क्या कहता है कि बाप को सब कुछ बताए, मैं निराकार सब कुछ जानता हूँ, हरेक चीज हरेक
जन्म पत्री
जानता है, ब्राह्मणों की जन्म पत्री
को जानता है,
राशि को जानता है, जन्म पत्री को जानता है, दशा को जानता है,
समय को
जानता है, तिथि को जानता है, तारीख जानता है, कुंडली सारी जो है ना सब जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं है। और कौन सी पॉइंट है एक हफ्ते में?
एक हफ्ते में
दो, एक है ज्ञान का बल, दूसरा है सजाओं का बल, योग का बल और सजाओं,
दो विधि से आत्मा पावन बनेगी,
योग
याद का बल और
सजाओ का बल
कम हो जाएगा।
पर सजाओ से अगर खाओगे तो पद कम भी हो जाएगा, थोड़ा अपमान भी है उसमें,
सबके सामने प्रत्यक्ष होगा,
तुमने जो जो पाप किए वो सबके सामने प्रत्यक्ष होगी, साक्षात्कार दो चीजों का होगा, एक तो सजा है क्या क्या पद मिलने वाला है और क्या क्या पाप, ऐसे ही तुमको विदाउट ट्रिब्यूनल जो बैठेगी ऐसे ही थोड़ी ना सजा दी जाएगी, दिखाया जाएगा पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये है पूरे पाप, अभी ये सजा, नहीं तो बोलेगा मैंने ये किया ही नहीं, क्योंकि कोर्ट में हर जो आरोपी होता है यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ,
सारे गवाह सबूत,
गवाह चाहिए, एविडेंस चाहिए, ये सब दिखाए जाएंगे, ये इस तारीख को ये ये ऑटोमेटिक मशीनरी बनी हुई है, बाप नहीं कहेगा कि ये तुमने किया तो ये मिलेगा, ये ऑटोमेटिक, जैसे टेप ऑटोमेटिक बोला ना आज, वो भी ऑटोमेटिक मशीनरी है।
एक तो क्या है, जो गलती जो किया है उसको तो वो भागते ही है अंदर ही अंदर,
एक है गलती अपनी स्वीकार कर लेना, उस गलती को स्वीकार करके, क्योंकि एक मुरली में बाबा ने कहा क्षमा शब्द इस ड्रामा में नहीं है, कोई भी गलती की क्षमा नहीं हो सकती, वो अलग बात है, बाप को सुना दो हल्का हो जाओ हल्का कर दो वो अलग बात है, अपने योग बल से उसको चुप्त करो, पर इस ड्रामा में क्षमा शब्द ही नहीं है,
जो काम कर
जो किया उसका फल तो मिलना ही है,
अभी भी तो बोला
चाहे मनसा भी कुछ भी कर्म किया है, मनसा किसी के प्रति ईर्ष्या, बाबा ने एक मुरली कहा है कि अगर तुम किसी की ग्लानी करते हो, अगर कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा की ग्लानी करती है तो उस आत्मा की दुगुनी ग्लानी होगी, अव्यक्त महावाक्य कितना सूक्ष्म है,
दस गुना तुम्हारी
पर
में ये तो माफ
नहीं है, लेकिन
गुंबद में जैसे
कम हो जाएगी वो अलग बात है, और वो कैसे अगर हमने कोई गलती की महसूस होगी और हम अपना पुरुषार्थ चालू कर देंगे तो हमारी एक्चुअली वो नहीं करेगा, हमारी शक्ति से वो नष्ट हो जाएगा पाप, हमारी शक्ति से पाप नष्ट होगा, वो कुछ नहीं करेगा उसमें,
जैसे संकल्प करते हैं कि आज तक।
पर अगर कोई है ये शब्द का उल्टा अर्थ ले सकते, बाप को सुना दो तो आधा माफ, गलतियां करे जा रहे हैं बाप को सुना रहे, गलतियां करे जा रहे हैं बाप को सुना रहे, तो ये माफ होने का होगा
की सुनाने की विधि रखी
है,
उनकी तपस्या है, उनको एक्स्ट्रा दुआएं प्राप्त हो जाएगी, लंबे समय का उनका पुरुषार्थ है,
महारथी
लास्ट संडे के लास्ट संडे की मुरली है, इसके लिए तुमको किसी को देखना नहीं है, वो उनके पास देखो अभी भले कुछ नहीं कर रहे परंतु उनके पास जमा है, और वो समय पर पटक से अपनी स्थिति बनाकर आगे चले जाएंगे, और तुम उनको ही देखते रहेंगे कि ये ऐसा करता है ऐसा करता है ऐसा करता है, वो तो आगे निकल जाएंगे, उनके तो जमा है ना ग्रेस मार्क्स है सब कुछ है उनका, और वो आत्माएं हैं कि जिन्होंने भगवान की उस समय मदद की
जब जरूरत थी
भगवान को, तो भगवान बंधा है उनको मदद करने के लिए, जिन्होंने जो आदि रतन जो भी है भले अभी कुछ नहीं कर रहे परंतु भगवान की जिन्होंने उस समय मदद की है भगवान चाहे अभी कुछ भी कर रहे हो उनका सब कुछ करने के लिए योगक्षेम हम भाम में हम परमात्मा प्रतिज्ञा है कि उनका सब कुछ मैं करूंगा। पदम गुना मिलेगा इसके लिए उनके सर पर बाबा ने क्या करा हाथ रखा ना, हाथ तो सबके सर पर भी है पर पहले
वो
जो है जो पहले आए साकार वाले जो है उनके सर पर उनका भाग्यवान। बाकी सब भाग्य सबको मिल सकता है पर ये भाग्य
नहीं मिलेगा,
नहीं मिल सकता।
अभी आया ना
लास्ट
और भी बोला ना,
और दूसरी पॉइंट
पर बाबा ने ये भी कहा है कि जिन्होंने साकार की पालना लिया है उनका जो है 100% से मार्क्स आ जाएगा, जो ऑब्जेक्ट से पालना लिया साकार नहीं लिया उनका 75% क्रैश। ऑब्जेक्ट ही पालना वाले
तो फिर हम
फायदे में स्वार्थी कितने हम अपना देख रहे हैं।
चलो इधर इधर से अभी एक हफ्ते का मुरली बोलो राजेश में एक हफ्ते की पॉइंट फटाफट। हाँ भक्ति से बीमारी बाहर नहीं आती है, ज्ञान से सारी बीमारी बाहर आती है। बहुत पावरफुल पॉइंट है। इसके लिए जो इंक की बोतल का उदाहरण दिया जाता है भक्ति में, इंक की जो बोतल होती है ना खत्म हो गई तो अभी वो धोना है तो पानी डाला जाता है तो पहले क्या निकलेगा, नीला नीला निकलेगा ना, एकदम स्वच्छ पानी नहीं निकलता, पहले नीला नीला पूरा निकलेगा क्योंकि स्वच्छ होने की प्रोसेस अभी चालू हो गई है, पानी उसमें जा रहा है बहुत सारा निकलेगा माल अंदर और फिर धीरे धीरे स्वच्छ पानी निकलेगा। तब समझ लेना लंबे समय का पुरुषार्थ। पर इसके लिए ऐसा नहीं कि ऐसा देखा कि अरे ये हरा आ रहा नीला आ रहा है छोड़ दो पुरुषार्थ, क्या करना है मन में तो वापस विकार के संकल्प उत्पन्न हो रहे, वापस वो व्यर्थ। जब हमने सोचा जिस दिन रोएंगे नहीं, सुबह सुबह संकल्प करते बहने उसी दिन कुछ होता है और होती है। ये देखा गया जिस दिन संकल्प करते कि आज रोएंगे नहीं, चाहे कोई हमको कैसा भी व्यवहार करे कितना भी खराब बोले उसी दिन रोना आता है। ये भी कर्म की कोई जगह नहीं है। तो आने दो ज्ञान से सब कुछ
हमारी अंदर आएंगे।
और दूसरा पॉइंट
और एक पॉइंट ये भी था कि मोहन भाई की दृष्टि से
मोहन भाई की तो दृष्टि की तो लहर ही चला दी बाबा ने, पूरा कितनी मुरली चल रही है इसके ऊपर।
वो तो अच्छे गुस्तार्थी के उसमें
विकार में पूरा खलास कर देता है विकार। बहन बाप तुमको इस मोहन भाई की दृष्टि से भी ऊपर उठाते हैं, जोर से उठाते हैं।
हाँ योग पर बाबा जोर देते हैं,
योग पर बाबा इस
बोला ऐसे समझो मैं जैसे शरीर में हूँ ही नहीं,
मरा हुआ हूँ जैसे मैं मरा।
इस शरीर को बाबा ने कहा ना अपने को इस शरीर से अलग
समझो, अलग समझो,
अलग शब्द है वहाँ अपने को इस शरीर से अलग समझो, ऐसा अनुभव हो कि ये शरीर अलग और मैं अलग, ऐसे दो चीज चल रही है मैं अलग शरीर अलग, ये शरीर मैं जैसे नारियल सूखा नारियल और गीला नारियल, गीला नारियल मतलब देहभान, सूखा नारियल मतलब अंदर का नारियल अलग ऊपर का अलग, ऐसे ऐसे बचता है वो संपूर्ण अवस्था का प्रतीक है सूखा नारियल।
बजेंगे तो
बजेंगे माना जब कोई बजा रहा हो ना,
नहीं मतलब अनुभव की बात है, बजा दूसरों की नहीं अंदर कि वो अलग मैं अलग, ये देह अलग वो आत्मा अलग। और बोलो बोलो इधर फटाफट। अर्जुन और भील तो बाहर वाले भी यहाँ वाले से सीखे जा सकते हैं, बाहर वाले एकलव्य भील है गृहस्थ में रहने वाले और ये अर्जुन यहाँ रहने वाले अंदर है। और
बाप से दो शब्द भी अगर सुने
तो विश्व के मालिक बाप से दो शब्द सुने
नहीं, पर उसमें वाक्य ऐसा था वो किसका कहा हुआ, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं या शिव बाबा कह रहे हैं,
विश्व का मालिक
मैं, विश्व का मालिक, विश्व का मालिक कौन है,
शिव बाबा,
मैं विश्व का मालिक नहीं बनता ब्रह्मा के वक्त
बन गए थे।
ठीक है वाक्य कैसा है, मैं विश्व का मालिक, मुझसे मुझ विश्व के मालिक से अगर कोई दो अक्षर भी सुनता है तो वो स्वर्ग में आ जाएगा,
शिव बाबा कह रहे थे।
चलो ठीक है विश्व का मालिक मैं नहीं बनता तुमको बनाता हूँ,
लेकिन उस दिन तो
उस दिन था
ठीक है दिखा रहा था तो उस दिन तो वो
ठीक है चलो वो है। और बोलो शिवानंद भाई
ब्रह्मा बाबा
फटाफट बोलो बहुत पॉइंट है।
भाग्य भी था तब बाप को जानना पहचानना
हो गया
तो बच्चा ही बन जाना
ये सबसे बड़ा भाग्य
लोग रहा
हूँ
आपको एक काम किया अभी तक बताया नहीं आपको आज
वाणी से परे रहता है वो पाँच परसेंट बस ज्यादा नहीं मैं जो हूँ जैसा हूँ 5% बाबा ने ये भी कहा जब तुम मुझे संपूर्ण जान जाओगे तब तुम संपूर्ण बन जाओगे इसके लिए इसका मतलब अभी तक जानते नहीं
संपूर्ण
जाएंगे वो भी उसको जानना वो क्या है वो व्हाट इज द माइंड ऑफ गॉड ये एक सब्जेक्ट है माइंड ऑफ गॉड उसके क्या फीलिंग्स है इमोशंस है वो जानना वो कैसे देखता है कैसे चलता है क्या करता है उसको साक्षी होकर देखना डायमंड हॉल में जब वो आता है वो सबको साक्षी होकर देखता है हम वहीं बैठकर उसको साक्षी होकर देखो कि वो क्या कर रहा है कैसे सबको देखता है
वहाँ होते होते भी नहीं होता है
हाँ और कैसे कैसे उड़ के निकल जाता है
नहीं 2009
वो कितना उसको उस देह से अटैचमेंट है वो भी देखो साक्षी होकर देखो वहीं पर बाबा को कि आत्मा उसमें है पर उस आत्मा को उस देह में कितना आकर्षण है कुछ भी नहीं उस आत्मा को बाकी जो आसपास है उनमें कितना आकर्षण है शारीरिक टाइप कुछ नहीं
2009 में
मूवमेंट कितनी है
मूवमेंट
कम से कम मूवमेंट से कहीं मूवमेंट दिखे हलचल कुछ नहीं
वो 2009 की बात
तो दादी का आईज का प्रॉब्लम है जिसमें टीयर्स निकलते कॉर्नियल एडिमा कहते हैं उसको मेडिकल में जिसमें वाटर जमा होता है और अपने आप आता है वो खुद हाथ लगा जाएगी उस आत्मा का उस देह में कितना मोह है जैसे मैं इस तन में रहता हूँ वैसे तुम रहो जैसे मैं इस तन में मरा हुआ हूँ वैसे तुम मरे हो जैसे मैं इस तन में मैंने इस तन लोन लिया वैसे तुम इस तन में वैसे ही रहो जैसे लोन लिया हुआ है एक मुरली चली ना लास्ट हफ्ते पूरी मुरली इसी पर चली साकार मुरली नेक्स्ट पॉइंट ईश्वरी और निफा तो
बीज वाला था
बीज वाला तो वरदान
हो गया वो
और अनिल भाई
बाबा को जानने की बात से नहीं एक मम्मी ने बोला कि जो कोई बच्चे 5% जानते हैं तो 95%
सजा होती है
ये तो बड़ा
95%
सजा होती है
नहीं ये नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो
ऐसा नहीं
है वो ऐसा नहीं है वो है नहीं सजा भोगने की पढ़ नहीं है वो लास्ट हफ्ते मुरली में आया
कई जो 5%
नहीं
पुरसाद की बात नहीं है
5% ही बाप को जानते हैं 95% तो ऐसे कुछ
सजा नहीं है जानने की बात निश्चय की
सजा नहीं थे कुछ और था वहाँ पर कुछ दूसरा था अभी याद नहीं आ रहा चलो और चिमन भाई तो क्या हो जाएगा तो मेहनत से और बहन जी कुछ एक हफ्ते में कोई भी कहीं पर भी रत्न कहीं
शिवरात्रि पे यही जन्मदिन है जो बच्चों और बाप का इकट्ठा होता है
संसार में ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता असंभव बाप और बच्चे का जन्मदिन एक दिन किसी भी रीति से ट्राई करके देखो असंभव है नहीं हो सकता
है
नहीं वही ना बाबा ने तो एक एक साकार मुरली अव्यक्त वाणी है जिसमें कहा कि बाप और बच्चों का दिन जन्मदिन मतलब तिथि भी एक तारीख भी एक वेला भी एक राशि भी एक
बाप बेटे का होगा दिन और मंथ
मिल जाएगा वही ना बोला
क्लियर करने के लिए कि ये जन्मदिन शिवरात्रि से किसका है
वो कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया तो अल्लाह कौन कब फरमाया क्या फरमाया तो वो कहा ना उसी मुरली में गॉड इज नॉलेजफुल तो बोलते पर नॉलेज कौन सी है वो पता नहीं उनको किसके सामने दिया कब दिया ये वो नहीं जानते तो शिवरात्रि पर ये सिद्ध करो वो मुरली में कितनी बार बताए, बार 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 बार, वही सिद्ध करके बताओ, सिद्ध करके बताओ।
शांति वाले कर रहे हैं।
चलो और
मीठा,
हाँ चना वाला देखा और खाने की इच्छा हुई, कमजोर है तो असर पड़ जाएगा, तो यज्ञ से जो भी मिले उसे मीठा समझ कर खाना है। जो आत्माएं कमेंट्स करती है भोजन पर, इसमें नमक कम है, इसमें तेल ज्यादा है, ये आज ऐसा है, ये सुबह सुबह भी तो था अभी भी है, वो अन्न का अपमान है ब्रह्मा भोजन का।
मिर्ची ज्यादा हो,
मिर्ची कुछ भी हो पर उसमें चलो उसका कुछ करो, नहीं खाओ कुछ करो, पर
बोलना नहीं,
कमेंट्स करना उसकी क्वालिटी के ऊपर, कमेंट्स करना, कमेंट्स नहीं करना किसी भी, चाहे कुछ भी बोलो।
यज्ञ का जो मिला मीठा,
मीठा मीठा शब्द है, चाहे कुछ भी हो फिर हो, मीठा शब्द बाबा ने यूज किया है, कुछ भी मिले।
हाँ
चलो उसको मीठा बनाओ,
मैंने जो मिले सहर से स्वीकार कर,
कम याद में बनाया तो थोड़ा ज्यादा,
ऐसा नहीं कि जैसे वो एक योग न लगने के कारण में ना कि पसंद का भोजन नहीं मिला तो भूख खत्म हो जाएगी, कहना कि अभी मुझे भूख नहीं है
या कुछ अच्छा मिला तो
ज्यादा खा लेना, जिस दिन अच्छा मिला उस दिन ज्यादा खा लेना। योगी अर्थात जिसकी अनासक्त, मास्टर सर्वशक्तिवान और टेस्ट के अधीन, ये हो नहीं सकता योगी।
डॉक्टर सर एक पॉइंट और था कि कई समस्या बीमारी के कारण जो है हमको ये चीज
मिलना चाहिए,
बाबा ने कहा यज्ञ का जो मिलो वो कई ऐसा बीमारी बताना पड़ता है, कैल्शियम चाहिए
बना ले लोग है ना, पता है
जो हम खा रहे इस भावना से खा रहे, वो भावना बहुत इम्पोर्टेंट है। अन्न दोष जगदीश भाई ने किताब में लिखा है, तीन दोष है अन्न में, एक तो वो दोष जिसमें कंकड़ पत्थर है वो एक अन्न का दोष, दूसरा किस रीति से उसको
बनाया,
कमाई कहाँ से, नहीं बनाया नहीं, कमाई कमाई कैसे कमाया है, और तीसरा है कि किस विचारों से उसको खाया जा रहा है। ये तीन दोष अन्न में, अभी यज्ञ में जो भी पैसा आ रहा है वो महान योगी आत्माओं का आ रहा है क्या, कहाँ से आ रहा है, नहीं एक दो नंबर एक नंबर का कैसा, हमको क्या पता, जो पैसा आ रहा है यज्ञ में रहते हुए भी, यज्ञ का भोजन खाते हुए भी, सारा वायुमंडल मिलने के बाद भी, सारे पुरुषार्थ के सारे साधन होते हुए भी आत्माएं पुरुषार्थ नहीं कर पा रही, उसका एक सूक्ष्म कारण है कि जो यज्ञ में पैसा आ रहा है वो किस रीति से आ रहा है। इसके लिए जो भोग लगाने की जो सिस्टम है वो जनरल वाला नहीं, पर्सनल
पर
खुद उसको अर्पण करके, जब तक अगर हमने नहीं खाया तो उसका असर हम पर पड़ेगा, भले ये ब्रह्मा भोजन है फिर भी, क्योंकि जो अन्न आ रहा है आज करोड़पति है, 10 लाख दे देते, न योग न ज्ञान न कुछ न कुछ न कुछ,
10 लाख में
चला
आज। दूसरा एक चीज यहाँ पे देने का एक कारण है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की वजह से भी यहाँ से रिसिप्ट मिलती है ना, इसके लिए उसके वजह से भी यहाँ देते
हैं,
इनकम टैक्स की वजह से भी कई लोग देते हैं, इसमें कोई भावना ऐसी कुछ खास नहीं है, पर
नहीं प्रैक्टिकली है ये, एक दो
बहुत प्रैक्टिकल बात है,
नहीं
सब जगह जाता है, सब जगह जाता है,
तो भी तो सजा बच गया तो ट्रिब्यूनल में बैठे,
जी जी बोलिए।
जैसे अभी आपने बोला ना ये संकल्प मुझे तब आया जब मैंने मधुबन में देखा ना कि गड़बड़ हुई, सॉरी तो इसका पॉइंट मैं समझ गई थी क्यों है,
बहुत सूक्ष्म कारण इसके लिए
क्योंकि उसे खाने वाले अलवेले क्यों हो रहे हैं, जैसे जैसा धन आता है उसके साथ जो भी आप करते हो ना उसका असर उसमें है ही, क्योंकि कमाने का जरिए रहता है आजकल, मैं बिजनेस में भी हूँ बिल्कुल सही कर रहे था वहाँ पे हॉलैंड में नहीं हो रहा, अब मीट बेचो शराब बेचो ये बेचो वो, मैं बेचना नहीं चाहती हूँ, रेस्टोरेंट खोलूंगी, अगर वो नहीं खोलती हूँ कपड़े का काम करूंगी वो चलता नहीं है, तो उससे क्या करते हैं वहाँ पे वो नकली बिल काटते हैं, काट के वो उससे टैक्स लेते, टैक्स जो होता है ना उसको देते हैं कि हम लोगों को घाटा पड़ गया ये है, उनसे पैसे ले रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट से, उल्टा है ना। और यहाँ पे जो इंडियन है वो बहुत ऐसे गलत काम करते हैं,
इसके लिए ना तो इसके
लिए क्या करते हैं वो यहाँ पे पैसा क्यों देते हैं आगे दादियों के पास होने के लिए, उनके साथ आशीर्वाद लेने।
और दूसरा इनकम टैक्स, ये भी एक कारण,
इनकम टैक्स
क्योंकि रिसिप्ट मिलती है ना अभी यहाँ से, बाकायदा रिसिप्ट मिलती
है
पूरी, ये इतना डोनेशन दिया तो उससे वो उधर दिखाते हैं, वो
बच जाता
है, इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ता है, नहीं तो इनकम टैक्स ज्यादा लगता है।
एक लेटर अकाउंट वालों ने भेजी 4-5 दिन पहले रोजरी में, उसमें लिखा कि अभी बहुत सारी बचने की जरूरत है, स्टिंग ऑपरेशन करने वाले बहुत हैं। तो स्टिंग ऑपरेशन बना किसी ने भी कैमरा लगा होगा या मोबाइल में आपको डोनेशन देंगे कि आप अपने यज्ञ का नंबर दो अकाउंट वाला, तो हम आपको पैसा डाल देंगे, आप अपने अकाउंट का नंबर दो हम पैसा डाल देंगे, तो इस तरीके से वो धीरे धीरे फंसाएंगे और आप लोग फंस जाएंगे। ये लेटर मैं लेके आऊंगा, प्रिंटर तो पड़ेंगे,
जरूरी है वो।
इसके लिए जो भोजन सामने आ रहा है उसको बाप की याद में, ज्यादा हो सके तो मौन में, अगर नहीं हो किसी वजह से नहीं होता है, बात करना पड़ता भी है वो दूसरी बात है, पर याद में शांत चित्त से और बाप को धन्यवाद देते हुए कुछ ना कुछ सामान से, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर, बहुत जरूरी।
अभी
सूरज भाई ने एक उदाहरण दिया था, एक सेवाधारी भाई जो हमेशा मौन में भोजन खाता था, मधुबन में आया सेवा करने के लिए, एक मास देखा यहाँ तो कोई मौन में नहीं खा रहा है, वो भी बातें करना चालू कर दिया, अभी क्या कहे इस तरह पहले हमेशा मौन में भोजन करता था, पर यहाँ आने के बाद में जब देखा कोई नहीं खा रहा है तो चलो हम भी
बहुत ठंडे वक्त
हम लोगों का असर बहुत पड़ता है, क्योंकि हम लोग मिरर है, जिसमें जो देखेगा वैसा बनेगा, ऐसे सोचते हैं ऐसे ही है हम लोग। मैं जिसके पास बैठती हूँ मुझे पता है ये पूरे भरे हुए हैं, मगर उनको अपनी वैल्यू नहीं पता है। अपनी वैल्यू जानना बहुत जरूरी है, मैं कौन हूँ, क्योंकि हम दूसरे को देखते ही समझते हो ये तो गाड़ी है, इसके पास ये है, स्टेटस है, अच्छा है, बढ़िया, मगर आप लोग हम लोग सभी जो हैं वो कोई हो ही नहीं सकता, जो अब बाबा पर्सनैलिटी बोल रहे
हैं
वो कोई नहीं है,
नहीं है सकते।
ये अपनी ना सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बढ़ाओ, किसी के आगे झुको मत। बाबा ने बोला ना मांगना नहीं है, मर जाओ मांगो नहीं। मैंने पक्का किया हुआ है, मैं किसी से कभी भी कुछ भी हो जाए ना, लो तो लो कर लो, कुछ भी कर लो, मगर कभी किसी के सामने मांगना नहीं है, पक्के रहना, क्योंकि आपको देख के आएगा। मेरे घर में अभी ये हो रहा है, मुझे देख के जो हम लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट थे वो भी सारे धीरे धीरे ले, अच्छा क्या करते हो, क्या है ये, मेरा चाल चलन देखने के बाद मैं पक्की हूँ। उन्होंने बहुत तोड़ने की कोशिश की मुझे 5 साल में बहुत बातें, तू शादी करी ये है वो है, पता नहीं तेरा बेटा बड़ा हो रहा है, बहुत बातें बोली, बोलते जाओ। मैंने बाबा के साथ मैंने स्टडी शुरू की थी, उस स्टडी से मेरा माइंड ना डाइवर्ट हो रहा था, मैंने रोबोटिक्स में अभी फिर से शुरू की है, इसलिए मैंने बिल्कुल बंद कर दी वो, मैंने कहा बाबा चाहिए मुझे, वो स्टडी नहीं चाहिए, और मैंने बंद कर दी। 6 महीने मैंने सोचा, मैं इतना मैं बहुत ज़्यादा कभी स्टार्टिंग नहीं हुआ था मुझे ज्ञान का, मेरा इतना मन माइंड डाइवर्ट हो रहा था, मैं बाबा से दूर हो रही थी, तो मैंने वो स्टडी छोड़ दी, कभी अभी नहीं मैं करूँगी, और मैं पूरा प्रसाद की तरफ ध्यान दे दिया था। और ये अभी मैं बोल सकती हूँ, अभी आप लोगों से भी सीखने को मिलता है ना, काम करते करते बोलते ना कार
तो 10 बज गए। अगले 2 तारीख को मैं थोड़ा बाहर जा रहा
हूँ, 2 तारीख को, अच्छा
नहीं 1 तारीख को कर सकते हैं, शनिवार फ्राइडे है शायद,
ठीक है फ्राइडे
मैं फिर 2 हफ्ता हैदराबाद जा रहा हूँ, कुछ काम
हिस्ट्री मैथमेटिक्स पर क्लासेस,
उसका मैं कभी प्रेजेंटेशन बनाऊंगा तो वहाँ दिखा सकते हैं,
ठीक है
इतिहास द्वापर से अब तक,
ठीक है हाँ,
वो अलग वो यहाँ डिस्कस नहीं मजा नहीं, वो कुछ देखे तो थोड़ा अच्छा लगता है,
बना के रखा है या बनाएंगे,
बना सकता हूँ कभी, बना दो बनाया नहीं है तो बना दो, हो गया एक बार 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 नहीं,
वो तो जिन्होंने सुना बदल गए ना, बदल गया बहुत सारे,
बताइए
नेक्स्ट तो चले जाएंगे
इनके पास है,
वो ये चले जाएंगे फिर बाद में,
वो वीडियो वो है ना आपके पास,
वो ठीक जो
ऑडियो में
ठीक मैं आपको दे दूंगा,
वो फॉरवर्ड कर दूँ, पुराने मेल में होगा।
हाँ है मेरे पास।
ओम शांति।